ओम शांति, ओम शांति। हम सब प्यारे बाबा की विशेष यादों में योग तपस्या कर रहे हैं। इस यज्ञ की आधार मूर्त हमारी दादियां, हमारे वरिष्ठ भाई दादाएं, जिन्होंने यज्ञ का फाउंडेशन बनकर के पिल्लर की रीति से बाबा के अव्यक्त होने के बाद इस यज्ञ को इतना विस्तार रूप दिया। मेरा भी उनके साथ बहुत समीप संबंध पाठ बजाने का रहा। 1971 की बात है, 71 में मैं मधुबन में पहली बार आया। वैसे तो हमारी दादियों की, बड़ों की पालना मुझे 4 साल की उम्र से ही मिलती रही। जब मेरी उम्र 4 साल थी, 1960 में मातेश्वरी हमारी मीठी मम्मा 35 दादियों को लेकर के हमारे गांव में आई थी। छोटे से गांव में कोई साधन नहीं, कोई उस समय साइंस के साधन तो क्या, लेटरिन बाथरूम भी नहीं। टेम्परेरी रूप में थोड़ा सा स्थान बनाया गया था और गांव में घूमने के लिए कोई गाड़ी मोटर तो थी नहीं, बैलगाड़ी थी। तो इन दादियों को हमारे लौकिक पिताजी ने बैलगाड़ी में पूरे गांव की परिक्रमा कराई थी। वो दृश्य तो मुझे नहीं सामने आता है, लेकिन मेरा बचपन इन्हीं दादियों की गोदी में ही पला। एक दादी थी, नाम तो आप सबने सुना होगा, अभी बेंगलोर में 2 साल पहले शरीर छोड़ा, सरला दादी। सरला दादी कानपुर में थी उस समय और मेरी लौकिक बड़ी बहन उनके साथ सेवा पर थी। और दादियां इतनी नम्रचित, इतनी निर्माणचित, क्योंकि सेवाओं का इतना विस्तार भी नहीं था। कोई भी गांव वाले अगर निमंत्रण देते थे दादियों को तो बहुत सहज रीति से वो गांव में सेवा के लिए चले जाते थे। और मेरे गांव में भी कभी 10 दिन, कभी 15 दिन आकर के रहती थी। और सवेरे सवेरे अंधेरे में मम्मी के साथ, माता जी के साथ बाहर जंगल में ही जाती थी लोटा लेके। लेटरिन बाथरूम नहीं था गांव में, बनाने भी नहीं देते थे। इन दादियों की त्याग तपस्या, उनकी सेवाएं, जिसके आधार से आज ये यज्ञ इतना बड़ा विस्तार को पाया है। बहुत सरल, मिलनसार, सहनशील ये दादियां रही। तो मैं शायद 6-7 साल का जब था, याद आता है मुझे वो दिन। तो मैं इन दादियों को इनकी गोदी में ही खेलता था, थाली से ही खा लेता था। तो वो सरला दादी विशेष हमारे गांव में जाती थी और मुझे बहुत प्यार से पालना देती थी। और मैं घर में अकेला था, बहन तो सेंटर पर चली गई और भाइयों में और कोई नहीं था। परिवार के अंदर पिताजी, 3 भाई थे, लेकिन उसमें मैं इकलौता बेटा था। इसलिए लौकिक और अलौकिक दोनों परिवार की पालना मिली। कभी कभी मैं बीच में स्कूल की छुट्टी लेकर के कानपुर चला जाता था, दादी के साथ वहां भी रहते थे सेंटर पर। उसके बाद जब मेरी उम्र करीब 15 साल की थी तो पहली बार मैं मधुबन आया और मधुबन में एक महीने की छुट्टी में आया था, 9th क्लास में पढ़ता था, स्कूल की छुट्टी थी। तो एक मास में पांडव भवन ही था छोटा, उस समय तो ओम शांति भवन या मेडिटेशन हॉल भी नहीं था, और सब प्रकार की सेवाएं थी स्थूल। और दादियां तो ठीक, लेकिन दादियों की जो लौकिक माताएं माँ थी, हमारी रतनमयी दादी की लौकिक माँ, शांतामय दादी की मौसी, दीदी की लौकिक माँ क्वीन मदर, देवी माता, ध्यानी दादी, ये सब बुजुर्ग थी, बड़ी आयु की थी। और जब छोटे बच्चे आते हैं तो उनको ये सेवा का चांस मिलता है कि दादियों के कमरे में जाओ, इन बुजुर्ग माताओं के कमरे में जाओ, उनको भोजन दे आओ, उनको गर्म पानी दे आओ, उनके कपड़े सुखा करके आ जाओ। एक मास तक हमने इन माताओं की बहुत सेवा की, पालना की, रहा मधुबन में, और इनका इतना प्यार मिला जैसे कोई लौकिक में बच्चे को मिले। ज्ञान योग मेरे पास इतना नहीं था, भले मेरे घर में ही मुरली चलती थी, लेकिन मैंने घर में एक दिन भी मुरली नहीं सुनी थी। जब मुरली पूरी हो जाती थी तब मैं सो के उठता था, लेकिन जब मधुबन में आया और दादियों की इतनी पहली पालना मिली, माताओं की पालना मिली विशेष यज्ञ की, और एक एक चीज का ध्यान रखती थी, क्या खाया, क्या पहना, कहाँ गए, किसी दिन मान लो मैं भोजन पर या नाश्ते पर उनको दिखाई नहीं दिया तो पूरी इंक्वायरी करती थी, कहाँ है आज, क्यों नहीं आया, तबीयत ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं। बहुत सारी दादियां थी, बुजुर्ग थी उस समय, भूरी दादी थी, भोली दादी थी, सती दादी थी, बहुत दादियों का तो मधुबन ही था, और इन दादियों के साथ सेवा करने का सौभाग्य मिला, और स्थूल सेवाएं ही करने का, क्योंकि ज्ञान योग की सेवाएं तो मधुबन में इतनी थी भी नहीं। दादी जी मुरली सुना देती थी सवेरे, दीदी अमृत वेला मुख योग करा देती थी, और सारा दिन स्थूल सेवाएं, सब्जी काटो, बर्तन मांजो, सफाई करो, धोबी घाट करो, गर्म पानी करो, ये सब स्थूल सेवाएं थी। लेकिन उन स्थूल सेवाओं ने और दादियों की पालना ने मुझे उनके बहुत समीप ले आया, और जब एक मास पूरा हुआ तो दीदी की परख शक्ति बहुत थी। दीदी ने दादी को कहा, दादी प्रकाशमणि को, मैं समझता हूँ इस क्लास में दीदी और दादी को तो देखने वाले बैठे होंगे, जो जिन्होंने दादी प्रकाशमणि को देखा हाथ उठाओ, बहुत हैं, और जिन्होंने दीदी जी को देखा, दीदी मनमोहिनी को, एक भी नहीं है, एक उठा रहा, एक बहुत पीछे कोई बैठे हैं, एक भाई, दो भाई। अच्छा, दीदी ने 83 में शरीर छोड़ा, और 83 के पहले वाले तो जरूर दीदी से मिले होंगे, दीदी की पालना का अनुभव किया होगा, दीदी के जीवन में लव और ला का बहुत बड़ा बैलेंस था, और उस बैलेंस के आधार से हम सब के फाउंडेशन को उन्होंने बहुत मजबूत करवाया। क्या है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन? ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन केवल दो बातों पर निर्भर करता है, एक अमृत वेले का योग और दूसरा मुरली क्लास। कभी भी एक दिन भी ये दोनों चीजें किसी के मिस न हो, इस पर उनका बहुत ध्यान रहता था, सेवाएं कितनी भी करो, लेकिन सेवा के साथ साथ अपनी स्थिति बनाने के लिए आपको खुद अपना ध्यान देना है। मान लो सेवा के समय ही ऐसी कोई सेवा आ गई, मुरली के समय ही सेवा है, हमारा तो योग के समय होता था सबके कमरे में पानी पहुंचाना, 4 बजे से बाल्टियां उठा उठा के कमरों में पहुंचाते थे, और जब मुरली चलती थी तो उस समय धोबी घाट करते थे। इसलिए क्लास की हाजिरी मैंने तो शायद ही कभी दी हो, मुरली क्लास में या अमृत वेले के योग में। लेकिन जब बीच बीच में सेवाएं कम होती गई उसके बाद तो बहुत ध्यान रहता था बड़ों का। फिर भी कोई भी इन दो बातों को वंचित न हो, इसको मिस न करे, इस पर अटेंशन खिंचवाते थे। भले उस समय आपने नहीं पढ़ पाया, नहीं सुना, क्लास में आए बाद में समय दिया, बाबा के कमरे में जाके स्पेशल योग किया, तो ऐसे अटेंशन दिलवा करके सबके फाउंडेशन को मजबूत करते थे। और एक दूसरी बात कि कोई भी जो यज्ञ के अंदर समर्पित हो रहे हैं, क्योंकि 71 में तो मैं स्कूल की लाइफ से आया था, दीदी ने कहा कि ये यहाँ के लायक है, रह सकता है, लेकिन दादी इसका इंटरव्यू लेगी। तो दादी जी ने जब इंटरव्यू लिया तो उसमें तो मुझे फेल कर दिया। क्यों फेल किया? क्योंकि मैं बहुत छोटी आयु का था, 18 साल की आयु हो जाए और कम से कम और 3-4 साल और पढ़ लो, और परिवार में मैं इकलौता हूं इसलिए कैसे छुट्टी मिलेगी। ऐसी कई बातें दादी ने पूछी और मैंने सच्चाई से बता दी। तो कहती, अरे ऐसे कैसे यहां रह सकेगा दीदी, तो पता नहीं क्यों ऐसे कहती है कि आप यहां रह सकते हो। मैं, दीदी दादी हम रह जाएंगे, हमको छुट्टी दे देंगे पिताजी, और अभी तो विनाश होने वाला है ना, पढ़ाई करके क्या करेंगे। बहुत पक्का था विनाश होने वाला है। तो दादी हंसने लगी, कहती अच्छा ठीक है, अगर छुट्टी मिलती है तो दीदी की छुट्टी तो है तुमको यहां रहने की, लेकिन अपने लौकिक पिताजी की चिट्ठी लेके आना, अगर वो छुट्टी दें तो एक साल पढ़ के आ जाना। तो मैं 72 में एक साल पढ़ने के लिए गया था, 72 अप्रैल में पढ़ाई पूरी करके आ गया, फिर नहीं गया वापस, और पिताजी की चिट्ठी लेके आ गया। उसके बाद दीदी ने, क्योंकि सब यंग एज में आए हैं, बच्चे हैं सब, 2-3 बातों का बहुत अटेंशन खिंचवाते। एक तो संघ की संभाल करना। अब आप सब समझते हो, आपके लौकिक जीवन में जहां शहरों में जिस गांव में जहां आप रहते हैं वहां तो संघ की संभाल करना बहुत बहुत जरूरी है। और मधुबन में मधुबन निवासियों को अगर कहा जाए संघ की संभाल करना तो जरूर प्रश्न उठेगा। तो मैंने कहा, दादी दीदी मैं लौकिक संघ से तो छोड़ के आ गया, जो स्कूल के लड़कों का संग था, दादागिरी वाला, बीड़ी सिगरेट वाला, वो तो सब छोड़ दिया मैंने, और यहां पर भी आप यही कह रहे हैं। तो दीदी कहती है, यहां पर भी ध्यान देना, जो स्वउन्नति के लिए समय नहीं देते, जो अमृत वेला नहीं करते, जो मुरली क्लास नहीं करते, जो कोई की भी करेक्शन में लगे रहते हैं, अवगुण ग्राही हैं, गुण नहीं देखते, कभी बड़ों की करेक्शन करेंगे, कभी मुरली में करेक्शन करेंगे, कभी किसी के लिए कमेंट्स करेंगे, ऐसे संग से संभलना, उनके संग में नहीं बैठना, न जाना न बैठना, और न उनकी सुनना। क्योंकि यहां पर भी कई ऐसे आते हैं, सेवा करते करते समर्पित हो जाते हैं, लेकिन अपने पर उनका अटेंशन नहीं है। स्वोन्नति पर अगर ध्यान नहीं है, स्वचिंतन की बजाय अगर ऊपर चिंतन कर रहे हैं, अपना समय अपने संकल्प किसी भी बात में व्यर्थ गंवा रहे हैं, तो ऐसे संग से अपने को बचाना। आप सब ध्यान देना इन बातों का, क्योंकि ये संग डुबो देगा। और कोई अच्छे पुरुषार्थी हैं, उमंग उत्साह वाले हैं, तो उनके संग में बैठने से उमंग आएगा, उत्साह आएगा, पुरुषार्थ की नवीनता मिलेगी, उनका संग करो, उनके संग में भले बैठो। तो ये ध्यान पहले खिंचवाया, और दूसरा बहुत अंडरलाइन, ये जो सबसे बड़ी ब्राह्मणों की बीमारी है वो है फैमिलियरिटी, MDRT समझते होंगे कुछ लोग, तो आपस में हंसना, बैठना, एकांत में जाके बातें करना, छिप छिप के बातें करना, उनसे लेन देन करना, चीजें देना लेना, खास करके बहन और भाई साथ में रह करके, सेवाएं साथ करके एक दूसरे के साथ, जरा भी कोई हंसी मजाक न हो, दैहिक दृष्टि न हो, जिसको फैमिलियरिटी कहा जाता है, और सबसे बड़ा विकार है। फैमिलियरिटी होते होते, आपस में लेन देन होते, बातचीत होते होते, कभी कभी कहीं न कहीं मुख्य मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। इसलिए बहुत अटेंशन, दीदी का तो इतना ध्यान रहता था, क्योंकि सब यंग कुमार कुमारियां मधुबन में हैं, ब्रह्मचर्य व्रत हमारा मूल फाउंडेशन है। कभी भी कोई एक को भी कहीं दो एकांत में बात करते हुए भी देख लिया और उनके पास कंप्लेन गई कि फलानी बहन के साथ फलाने भाई ने ऐसे बात की, वहां बैठे थे, खा रहे थे, हंस रहे थे, बस धर्मराज देखो ये यज्ञ है और इसका मूल बीज पवित्रता है, ब्रह्मचर्य व्रत है। अगर इसमें जरा भी कोई युद्ध हो, मेहनत लगे, तो दुनिया पड़ी हुई है, कहीं भी जा सकते हो, छुट्टी लेकर जा सकते हो, लेकिन यहां पर कोई भी इसकी बदबू नहीं होनी चाहिए। इस बात पर सब अंडरलाइन करना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का जो मूल फाउंडेशन है वो पवित्रता है। और दीदी एक व्रता थी, एक व्रता, एक बाबा दूसरा ना कोई, साकार में ही सब कुछ उन्होंने देखा, सब कुछ अनुभव किया, और उनके प्यार में केवल बाबा बाबा बाबा, इसके सिवाय उनकी बुद्धि में कहीं भी कोई कितना पैसे वाला हो, कितना स्नेही हो, सहयोगी हो, कितनी भी बड़ी विशेषताएं हो, दीदी की आंख कहीं भी नहीं गई। कहती थी ये क्या हमें देगा, दीदी बहुत बड़ी फैमिली की थी, धनाढ्य परिवार की थी, सब छोड़ करके समर्पित हुई, नाम गोपी था, लौकिक नाम गोपी था, और सचमुच गोपीपन के संस्कार थे, बस मेरा तो एक दूसरा ना कोई। और इसी रूप में हम सबको भी ऐसा पक्का कराती थी कि देखो कहीं पर भी किसी भी देहधारी में जरा भी लगाव और झुकाव नहीं होना चाहिए, किसी के प्रभाव में मत आना, किसी से नफरत नहीं, किसी से घृणा नहीं, किसी से वैर विरोध नहीं, लेकिन ये व्यक्ति अच्छा लगता है, इसका स्नेह अच्छा है, सहयोग अच्छा है, इसमें बहुत विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की तरफ भी अगर प्रभावित हो गए तो ये भी माया चूहे के रूप में अंदर अंदर कुतर देगी, खा लेगी, अंदर घुस जाएगी। ध्यान देना है सब, हम सबको अपनी जीवन बहुत निर्मल, बहुत पवित्र, बहुत स्वच्छ बनानी है, और सदा बाबा के साथ सच्चे दिल की प्रीत रख करके चलना है। पढ़ाई पर इतना अटेंशन, लौकिक में दीदी ने एक क्लास भी नहीं पढ़ाई की, वो साइन भी हिंदी में नहीं कर पाते थे, हिंदी में थोड़ा बहुत सीखा था, वही साइन करते थे, और मुख्य प्रशासिका थी। मम्मा के बाद दीदी को बाबा ने इस सीट पर रखा था। मम्मा 65 में अव्यक्त हुई और दीदी उस समय दिल्ली की सेवा पर थी। दीदी जी को बुला करके मम्मा की सीट पर रखा कि तुमको सारे परिवार की, बहनों की विशेष करके पालना करनी है, संभालना है। दीदी बहुत एक्यूरेट थी, बहुत लॉ और लॉ का बैलेंस रख करके हर ईश्वरीय नियम और मर्यादा कड़ाई से पालन करना और कराना। अगर कोई जरा भी कंप्लेन आ गई, कोई उनका सपोर्ट करने आ जाए, तो कहती थी उसके पहले तुम यहां से चले जाओ, गलत का सपोर्ट क्यों कर रहे हो, कभी सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी। और अगर मान लो कोई कारण से किसी ने अमृत वेला मिस किया है, क्यों मिस किया है कारण बताओ। अब उस समय तो हम बहुत थोड़े परिवार था, अभी तो हजारों में है, कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई सोया रहे कोई नहीं पूछता है। लेकिन वो समय था जब एक एक पर नजर रहती थी। क्लास से अगर हम उठ गए बीच से, तो एक बार दादी ने, दीदी ने क्या किया, दादी जी को बोला कि बहुत सारे पांडव, पांडव हम गोपों को, भाइयों को, कोई आते हैं कोई बीच से उठ जाते हैं कोई नहीं आते हैं, आप इनकी जांच करो ये क्या करते हैं, अमृत मिले। अब जांच कैसे करेंगे? तो दीदी ने दादी को कहा और दादी और मोहिनी बहन उन दोनों ने सवेरे योग के थोड़ा समय पहले 10-15 मिनट पहले योग से उठ करके जहां हम भाई लोग रहते थे पांडव भवन में लाइट हाउस, 25 भाई 5 कमरों में हम थे, 5-5 एक एक कमरे में, तो दोनों कैसे जाएं भाइयों के कमरे में, क्योंकि दीदी ने कहा सबकी जांच होनी चाहिए, क्यों सोए हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं योग के समय। तो दादी ने और मोहिनी बहन ने पहले साड़ी से घूंघट निकाला और घूंघट निकाल के माताओं के रूप में वो सीढ़ी पर आई, तो हम लोग ऊपर थे, 2-3 भाई बाहर मुरस कर रहे थे, तो हम बहुत जोर से चिल्लाए, अरे माता ये भाई लोग यहाँ रहते हैं, आप यहाँ किधर आ रही हो? तो दादी ने सीटी मारी ऐसे, चुप, कोई नहीं बोलेगा। हम समझ गए आज तो कुछ स्पेशल है, नहीं तो 4:30-5 बजे सबके कमरों में, भाइयों कमरे में दादी क्यों आएगी। कहती है चलो हमारे साथ चलो, कहाँ कौन सोया है सबके नाम नोट करो, क्या कर रहा है नोट करो, और पांचों कमरों में जो सोए थे जगाना नहीं किसी को, सिर्फ नाम नोट करके मुझे दो। अब एक कमरे से पांचों कमरों में चक्कर लगा के एक सीढ़ी से चढ़ी और दूसरे से निकल गई। अब उसके बीच में हलचल तो हो ही गई, सब जग गए जो सोए थे, या योग से जाके सो गए थे या योग में आए नहीं थे, अब सबके नाम तो चले गए, हलचल हो गई, अब क्या होगा भाई, क्योंकि लापुला संस्था लापुल है। तो क्लास के बाद 8:30-9 बजे दीदी अपने ऑफिस में बैठती थी और दीदी के साथ एक बेल होती थी, घंटी, ऐसे घंटी दबाती थी, पहरे वाले को कहती थी इधर आओ, जाओ फलाने भाई को बुला लो, फलाने को बुला लो। अब जब वो सिक्योरिटी वाला बुलाने आता था तो जिसको बुलाता था वो समझ जाता था आज मेरी पेशी होने वाली है, पहले डर जाता था। तो ऐसे जो 10-12 लोग होंगे सबको एक एक को बुलाया गया, सबको बहुत प्यार से, नाश्ता करके आए हो? अच्छा नाश्ता किया, अच्छा नकेले घूमने गए थे? अच्छा नकेले भी घूमने गए थे, अच्छा मुरली सुनी? मान लो सब में हाँ कर दिया तो अमृत वेले कहाँ थे? तुमको पता है कि अमृत वेले वरदानों की वर्षा होती है, स्वयं भगवान बच्चों को मिलने के लिए आता है, और ऐसे समय पर तुम लोग सोए रहते हो, क्या यहाँ पर केवल कपड़े लेकर के मजदूरी करने के लिए आते हो क्या? कपड़े लिए, भोजन लिया और मजदूरी किया, सेवा किया, ऐसे तो मजदूर अच्छे हैं, पैसा लेकर के काम करके चले जाते हैं। ऐसे बहुत प्यार से सब ट्रेनिंग दिया, सिखाया, बोला वो तो चुपचाप सुनता रहेगा क्या करेगा, फिर टोली मुंह में खिला करके आगे के लिए ध्यान देना, अगर ऐसी जीवन जीनी है तो दुनिया पड़ी हुई है, यहां रहना है तो ये नियम पालन करने, ऐसी शिक्षाएं मिलती थी। उस आधार से आज हम लोगों को 50 साल हो गए अमृत वेला मिस नहीं हुआ, कितने भी थके हुए हो, कितने बजे बजे सो, हमारे आप अपने आप नींद खुलती है, अलार्म लगाओ या न लगाओ अपने आप खुलती है। तो ये दादियों की पालना और उनका एक जो पढ़ाई से प्यार था। अब मैं दो दादियों की कहानी सुना देता हूं, क्योंकि ये मास जो चल रहा है हमारा मार्च का स्पेशल, पहली तो हमारी दादी चंद्रमणि मार्च में गई 11 मार्च, और हमारी दादी जानकी जी 27 मार्च को गई, और दादी और जानकी दादी, दादी चंद्रमणि, दोनों का कमरा एक ही था, एक साथ था इंद्रप्रस्थ, और बहुत दोनों का आपस में प्यार था। चंद्रमणि दादी बाद में यहां ज्ञान सरोवर की सेवा में निमित्त बनाया दादी ने। इन दोनों का क्या पार्ट था वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दादी चंद्रमणि जी को कहते थे पंजाब का शेर, और वो अमृतसर में रह करके सेवाएं करते थे पंजाबियों के, सरदारों के बीच में रह करके, और पंजाब से कन्याओं का बहुत बड़ा झुंड निकला पहले पहले। मैं समझता हूं 50 के लगभग अमृतसर से बड़ी बड़ी बहनें निकली जो कई सेंटर संभालने के निमित्त बनी। अभी तो उन्होंने कईयों ने सदी छोड़ दिया, लेकिन दादी की जो पालना थी उसमें कन्याओं का एक बहुत बड़ा झुंड निकला जो समर्पित हुआ। और जब एक घर से कोई कन्या निकलती और सरदारों की और पंजाबियों की अगर कोई बहनें निकलें तो झगड़े तो होते हैं, संभालना पड़ता है, बहुत विरोध होता है। कन्याएं एकदम निर्णय ले लें कि मुझे समर्पित होना है, नौकरी भी नहीं करनी है। तो दादी को बाबा ने पंजाब की सेवा पर रखा था चंद्रमय दादी को, और शेरनी की तरह निर्भय निश्चिंत, जरा भी उनके चेहरे पर कोई भी कितना भी गालियां देने वाला आए, उल्टा सीधा बोले, विरोध करे, वो निर्भय निश्चिंत। और इतना प्यार से हैंडलिंग करके इन कन्याओं को मुक्त करा दिया। हमारी राज बहन अमृतसर थी, राज बहन जलंधर थी, राज बहन लुधियाना थी, तीन तो राज थी, तीनों चली गई। हमारी अचल दीदी थी और बहुत सारी दादियां, अभी जो बहुत बड़ी बड़ी पंजाब जोन की सेवा के निमित्त बनी वो दादी चंद्रमणि जी ने निकाली है। लेकिन जब दीदी अव्यक्त हुई 83 में, तो संस्कार के बाद 30 जुलाई को बाबा का आना हुआ ओम शांति भवन में, और नंबर था सेकंड में सह मुख्य प्रशासिका जानकी दादी, दीदी की जगह पर। और बाबा ने कहा सह मुख्य प्रशासिका तो ये रहेंगी, लेकिन इनको विदेश में ही रहना है, क्योंकि विदेश की इतनी सेवाओं का विस्तार हो रहा है, वो वहां की सेवाओं को छोड़ करके मधुबन में नहीं रहेंगी। मधुबन में दादी जी के साथ सहयोग के लिए चंद्रमणि दादी और मनोहर दादी को बुलाया। मनोहर दादी करनाल में थी, पंजाब में ही, हरियाणा में, और चंद्रमणि दादी अमृतसर में थी। इनको कहा कि आप दादी को सहयोग करो, यहां रहो साथ में। और इन दादियों की ये बहुत बड़ी विशेषता थी, बाबा ने कहा या दादी ने कहा हाँ जी हाँ जी, कभी नहीं कहा मैं इतना बड़ा जोन, इतने सेंटर्स, इतनी सब पालना कैसे मैं छोड़ गया हूं, नहीं, दादी ने कहा और झट से एक सेकंड में संकल्प के बिना यहां रहने लगी। संतों में दादी को भी रख लिया। तो ये दादियां दादी के साथ सहयोगी बनी, और जानकी दादी जो विशेष लंदन में रह करके पूरे कारोबार को देखती, विदेश के सेंटर्स को, उनको वहीं पर भेज दिया बाबा ने। अब ये दोनों दादियां, दादी की इतनी सपूत कहें, आज्ञाकारी कहें, चंद्रमय दादी को बोला दादी ज्ञान सरोवर बन रहा है, आप रहेंगी, जो कहें जो आज्ञा। पांडव भवन में रहती थी, ज्ञान सरोवर बनते ही दादी ने चंद्रमय दादी को यहां रख दिया। और यहां तो एकांत मिली, तपस्या किया, बहुत अच्छा योग किया, और उस आत्मा की सबसे शरीर में भी मजबूत, मन में भी मजबूत, शक्तिशाली, कभी कोई ने नहीं सोचा होगा इतना अचानक ये आत्मा चली जाएगी। सब प्रकार की सेवाएं करते करते एक दिन बेंगलोर में सेवा के लिए छुट्टी लिया, क्योंकि बेंगलोर में दादी चंद्रमणि की बड़ी बहन ठिक्कन दादी, हम कहते थे हृदय पुष्पा दादी, रहती थी बेंगलोर में, और समय पर समय दादी चंद्रमणि उनको मदद करने के लिए जाती थी। कहीं भी सेवा, बहुत विस्तार हुआ बेंगलोर कर्नाटक में, तो चंद्रमय दादी छुट्टी लेके गई थी मधुबन से। और जिस दिन गई हैं उस दिन का दृश्य मुझे याद आता है कि मेरे ऑफिस के गेट के आगे गाड़ी खड़ी कर दिया, और कहती राजू को बुला के ले आओ। इन दादियों का पढ़ाई से बहुत प्यार था, मुरली से बहुत प्यार था। तो मैं जब गया, हमने कहा दादी बोलो क्या सेवा है, आप तो बेंगलोर जा रही हैं। कहा हाँ मैं बेंगलोर जा रही हूं और मेरे को सब इतने दिन की एडवांस मुरली चाहिए और क्लासेस चाहिए जिनकी दादियों की हैं। हमने दादी अभी आप बोल रही हैं, गाड़ी में बैठी हैं, गेट पर हैं। कहती कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं गाड़ी खड़ी करवा देती हूँ। बाहर गाड़ी खड़ी करवा दिया। जब मैं तैयार करके मुरली क्लासेज ले करके पहुंचा हूँ, लिया छुट्टी लिया ले करके बेंगलोर गई। और बेंगलोर में सेवा करते कई सेंटर्स का चक्कर लगा करके एक दिन शाम को थोड़ा सा दर्द पड़ा। साथ में रहने वाली बहन ने समझा दादी को गैस का दर्द है, वो गैस की दवाई देती रही, इनो देती रही, डॉक्टर को भी नहीं बुलाया और दादी गैस गैस कहते ही चली गई बाबा के पास। एक सेंटर पर, सेंटर पर बैठे बैठे चली गई, शरीर छोड़ दिया। और बाबा के पास गई तो उसको वतन में भी पता नहीं था कि मैं शरीर छोड़ के आई हूं। संदेशी जब गई है, गुलजार दादी जब भोग लगाया तो गुलजार दादी को संदेश में कहती है, देखा आप तो रोज आती थी, मैंने भी बाबा के पास मैंने अप्लीकेशन दी थी, मुझे बाबा बुलाए, अब मैं यहाँ का वतन का अनुभव कर रही हूँ, देखो मैं भी आपकी तरह आ गई हूँ। तो गुलजार दादी कहती आप मेरी तरह नहीं आई हैं, आप सदा के लिए आ गई, छोड़ करके आ गई हमको। अच्छा मैं शरीर छोड़ के आई हूँ क्या? नहीं नहीं मैं शरीर छोड़ के थोड़ी आई हूँ, ऐसी थी वो आत्मा। तो अचानक एक सेकेंड में शरीर को छोड़ना और शरीर छोड़ करके फिर बाबा ने जो पाठ पढ़ाया अचानक का, उसी समय से पढ़ाया, अचानक होगा अचानक होगा। उसके बाद उनकी बॉडी को भी यहां लेके आए थे बेंगलोर से। जानकी दादी का इतिहास आप सब जानते हो, सबने सुना है। इतनी बड़ी एज और इतनी एनर्जी की पावर जो अंदर थी उनके पास, लास्ट में फरवरी मास में पूना होकर के आई। पूना से ही सेवाओं का प्रारंभ किया और लास्ट में पूना की सेवा करके ही वहां से छुट्टी लेके हॉस्पिटल गई और मधुबन में आ गई थी ग्लोबल हॉस्पिटल में, और यहाँ ही शरीर छोड़ा 27 मार्च 2020 जब लॉकडाउन हुआ। लेकिन दादी जी का जो एक अंदर का निश्चय था, विश्वास था, कहती थी शरीर छोड़ूं तो कैसे, मरूं तो कैसे, मेरे अर्थी पर भी 5 रुपया नहीं खर्च होना चाहिए। हम लोग हंसते थे, कभी कभी ऐसे बोल देती थी, क्योंकि बहुत नजदीक से पाठ बजाने का सेवा का चांस मुझे भी मिला दादी के अव्यक्त होने के बाद। क्योंकि दादी जी जब अव्यक्त हुए 2007 में तो जानकी दादी जी को लंदन से बुलाया गया, यहीं रहना है अभी आपको। यहां रही तो हम लोगों के साथ वही जो दादी के साथ हमारा रोल था, पाठ था, सभी पत्रों को सुनना पढ़ना जवाब देना, वही पाठ दादी जानकी के साथ शुरू हुआ। तो रोज ही बैठना, रोज ही मिलना, रोज ही बातें कोई न कोई। और दादी जी का जो अपना मंथन चिंतन था, उनका जो ज्ञान का एक गहराई में जाने का अभ्यास था, वो बहुत वंडरफुल था। मैंने तो 72 से ही दादी की क्लासेस लिखना और टाइप करना शुरू कर दिया था। 73 में मैं टाइप सीखा, लेकिन उसके पहले ही दादी दीदी कहती थी तेरे को हिंदी अच्छी आती है, दादी जानकी जो क्लास कराती है तुमको सब लिखना है और लिख करके उसका सार बनाओ, सार में लिखना, ऐसे नहीं टोटल लिख देना, सार लिखो और सब सेंटर्स को भेजो। तो ये सेवा मुझे पहले से मिल गई थी। दीदी क्लास नहीं कराती थी, लेकिन दीदी टॉपिक देती थी जानकी दादी को कि आपको क्लास करानी, इस टॉपिक पर करो, इस टॉपिक पर करो। तो दीदी दादी की, दीदी और जानकी दादी की बहुत फ्रेंडशिप थी। जरूर मुरली के बाद 15-20 मिनट एकांत में बैठ करके रू रिहान करना, उसकी गहराई में जाना, आज बाबा की मुरली की ये विशेष बात थी। क्योंकि दीदी उसके प्रश्न उत्तर निकालती थी, उसको हाईलाइट करती थी, जानकी दादी से रू रियान करके कहती थी, आपको इस पर टॉपिक पर क्लास कराना है, और मेरे को बुलाकर कहती थी, जाओ तुमको जो अच्छा लगे इसमें से जो मैंने लिखा है वो प्रश्न उत्तर बनाओ और इनलाइन लेटर पर टाइप करके ले आओ। इनलाइन होता था उस समय तो 10 पैसे वाला था, फिर शायद 2-3 रुपए का, उसकी कार्बन कापियां हम निकालते थे टाइप पर प्रश्न उत्तर। और वही पत्रों के उत्तर में एक तरफ उसका जो साइड होता है उसमें उत्तर होता था और आगे के साइड में मुरली होती थी, प्रश्न उत्तर होते थे। और जितनी बार जितने पत्र आ जाए, मान लो आज 50 पत्र हैं तो मुझे 10 बार स्टैंड वो काटना है, कार्बन कापियां निकालनी है, 5-5 से ज्यादा नहीं निकलती थी। फोटो कापी तो थी ही नहीं उस समय, टाइपराइटर ही था, तो कार्बन लगा लगा कर टाइप करते थे। तो ऐसे दीदी के अंदर एक ये रहता था कि बाबा की एक एक बात को गहराई उसकी क्या है, हर एक बच्चे को उसका पता होना चाहिए। और जानकी दादी कहती थी तुम इस पर जरूर क्लास कराओ। तो दादी की क्लास कराने की शैली और उनका अपना चिंतन, उनके अनुभव बहुत वंडरफुल थे। दादी 1974 में 74 में लंदन गई हैं, उसके पहले कहने लगी पूना में सेवाएं करते कि मैं दादी क्यों जाऊं, वहां क्या है, इंग्लिश मुझे नहीं आती। बाबा ने कहा नहीं तुम्ही को जाना है। हाँ जी, ये दादियों ने हाँ जी का पाठ पढ़ करके क्या से क्या बन गई, केवल हाँ जी। और लंदन में किस लिए भेजा था शायद आप सब जानते हो, दादी की स्टूडेंट थी जयंती बहन की लौकिक माँ, जिनका नाम था रजनी माता, और उनका पिताजी का नाम मुरली भाई था। मुरली भाई ज्ञान में इतने नहीं थे लेकिन रजनी माता बहुत पक्की थी, और उन्होंने ही निमंत्रण दिया था कि अभी लंदन में सेवाएं शुरू करो। तो 71 में पहला ग्रुप गया, 72 में सेंटर खुल गया, और 74 में फिर जानकी दादी जी वहां गई। और वहां से उन्होंने जो विश्व में सेवाएं की, उनका त्याग ऐसा था, तपस्या ऐसी थी, दृष्टि से सृष्टि कैसे बदलती है, किसी को ऐसी दृष्टि दे दे तो उसका जीवन बदल जाए, ऐसी दादी की तपस्या थी। जयंती को कहती तो कोर्स कराओ, मैं इसको योग कराऊंगी, मैं इसको भोजन बना के खिलाऊंगी। भोजन बनाने में नंबर वन दादी जानकी। कोई की पालना कैसे करनी है, ऐसे लंदन में एक स्टूडेंट निकला, दो निकले, एक छोटा सा घर छोटे से स्थान पर रह करके, कोई साधन कोई सुविधा नहीं। मैं 2 बार लंदन गया, मैंने वो खास मकान में देखने गया कैसे दादी उस स्थान पर रहते थे, टेनिसन रोड, एक छोटा सा कमरा था। उसके बाद जो बाजू में रहता था, एक दिन आके दादी को कहता है, दादी लगता है मेरे कारण आपको कुछ तकलीफ होती है। बोली हाँ भाई तकलीफ तो होती है। क्या तकलीफ होती है? बोला तुम ये जो बनाता है ना खाना, उसकी सारी झार हमारे घर में घुस जाती, इसके कारण मेरे को बहुत खांसी आती है। कहता दादी मैं इसको छोड़ देता हूँ। वो छोड़ के मकान चला गया, वो दुकान वही मकान पहले मिला, 2 मकान मिले वहीं टेंशन रोड में, बाहर की बसों में जाना, ट्राम में जाना, वहां जा करके सेवा करना। जयंती बहन इंग्लिश में ट्रांसलेशन करती, दादी लेक्चर करती, स्थापना की। एक दिन कहती है, दादी की कहानी सुनी होगी, क्योंकि दादी को जमीन पर बैठने में लेटने में तकलीफ होती थी, संदल तो थे नहीं। तो एक दिन ऐसे पैदल कर रही थी, किसी ने अपने घर से कोई फेंकने वाली चीज होती है तो घर के बाहर रख देते हैं, म्युनिसिपैलिटी वाले आके उठा के ले जाते। तो एक बहुत सुंदर कोई तख्ता दरवाजा निकाल के किसी ने रखा था बाहर, और दादी चक्कर लगा रही थी तो पूछती उस मकान मालिक से कि ये दरवाजा तुमने निकाल के बाहर क्यों रखा है? तो कहते दादी ये मेरे काम का नहीं है, एक्स्ट्रा है इसलिए मैंने निकाल दिया। कहती है मैं ले सकती हूँ? बोला भले ले जाओ, हम तो फेंकने ही है इसको। और दादी वो अपने यहाँ उठवाई ले आई, उसके नीचे ईंटें और लकड़ियां लगा लगा करके उसको संदल बनाया, उस पर रात को सोना और सवेरे उठ करके उसी पर बैठ के संदली बना के क्लास कराना, ऐसे स्थापना की। इतना त्याग, इतना कुछ नहीं था, कोई भी चीज नहीं, लेकिन एक बहुत ऊंचा लक्ष्य था। टीचर्स बहनों को इसमें फॉलो करना चाहिए कि अगर भंडारी में मान लो स्टूडेंट आने लगे, कुछ भी पैसा आता है, आधा तो यज्ञ में पहले जाना चाहिए, देखना नहीं, आधा जाना चाहिए, बाबा का यज्ञ पहले भरपूर हो। मान लो कहती पहले 80 पाउंड आए, 40 मधुबन में जाएंगे, 40 यहां रहेंगे, उसी से अपना खर्चा चलाएंगे हम। बहुत इकोनॉमी से, बहुत त्याग वृत्ति से दो जोड़ी कपड़े में पूरा साल निकाल देते थे। कहती एक धोएंगे, पहनेंगे, क्या जरूरत है साड़ियां रखने की, क्या जरूरत है बेटी भरने की, थैली उठाई और चल दी। सेवाएं तो ऐसे किए इन लोगों ने, बहुत त्याग वृत्ति से। जब यहां से बॉम्बे में पहले पहले बाबा के समय सेवा पर गई थी, 20 रुपया दिया था, यीशु दादी से लेके गई थी, और वो भी खर्च नहीं करना है, पोस्ट मास्टर, रेल स्टेशन मास्टर की सेवा करके फ्री टिकट लिया ट्रेन में, और वहां जा करके, वहां पर पैदल जा करके कई किलोमीटर जहां जाना था वहां रिक्शा नहीं करना, पैसा नहीं खर्च करना था भी नहीं, 20 रुपया लेके गई और 20 बचा के लाई, सेवा करके आ गई। तो इन दादियों ने जो सेवा की है, त्याग किया है, तपस्या की है, उसका आज हम फल खा रहे हैं। बहुत सारी विशेषताएं दादी की रही, और लास्ट में जब वो संस्था की मुख्य प्रशासिका बनी दादी जी के बाद, इतना नम्र चित्त बन करके, निर्माण चित्त बन करके, त्याग वृत्ति से, सबको सम्मान दे करके, सब में विश्वास रख करके, सबको एकता के सूत्र में बांध करके चलाया। कहीं ऐसा नहीं, कहती थी मैं तो विदेश में इतने साल रही हूं, 40 साल विदेश में रही हूं, मुझे इंडिया के बारे में, भारत वालों के बारे में कुछ पता नहीं चलता, तुम तो जानते हो सबको, कहां क्या भेजना है, क्या लिखना है, कैसे दादी ने आपसे लिखाया है, तुम्हें लिखो सब, ये सेवा मुझे दे देते, मुझे बताओ भले, लेकिन करो तुम्हें। मैं बता देता था उनके नाम से पत्र, क्योंकि दादी के बाद उन्हीं के नाम से लिखना पड़े, लेकिन दादियां इतनी हम्बल, इतनी नम्र चित बन करके, एक दूसरे को सम्मान दे करके, यज्ञ की कारोबार को इतना सफल, इतना आगे बढ़ा करके चलाया। तो हम तो जानकी दादी की अनेक विशेषताएं देखते, कभी कोई भी प्रॉब्लम शरीर की तो आई, क्योंकि शरीर बड़ी आयु का था, हमेशा कहती थी कभी पूछो दादी तकलीफ हो रही है कुछ, कहती थी दर्द तो होता है। एक बार यहां से गई थी देहरादून सेवा पर 2004 में, शायद 4 या कोई 14 में, तो वहां गई और चारपाई से शायद नीचे गिर गई, फ्रैक्चर हो गया, और उसके बाद तो ऐसा लगा अभी तो दादी का बचना मुश्किल है, लेकिन बहुत योग बल का प्रयोग करके, बिस्तर पर होते हुए भी ऐसे क्लास कराना, मिलना जुलना, उस समय की क्लासेज भी हमारे पास हैं, उनका उस समय का भी चिंतन बड़ा वंडरफुल था। इतनी तकलीफ होते हुए कहती थी दर्द होता है, दुख नहीं होता है, दुख धाम से तो बाबा ने निकाल दिया, दुख नहीं होता, दर्द तो होगा ना, शरीर का हिसाब किताब है। लेकिन इतनी अच्छी स्थिति में रह करके, उस बीमारी में, उस दर्द में भी दादी ने कभी भी ये नहीं कहा मुझे दर्द है, तकलीफ है। और डॉक्टरों को तो इतनी चैलेंज कई बार किया जो मैं आपको क्या बताऊं, डॉक्टर्स बिल्कुल छुट्टी नहीं देते। एक बार की बात है, दादी को हर्निया की तकलीफ थी, पेट फूल गया था, तो यहां से बड़ी जल्दी जल्दी उठा करके अहमदाबाद भेज दिया, और अहमदाबाद में आईसीयू में भर्ती हो गई। अब नेचुरल है, जब पेट एकदम फूल जाता है, बाथरूम की तकलीफ, सब बातें की तकलीफ, बोलना बंद कर दिया, 2-3 दिन बोली नहीं, चुप। और डॉक्टर्स ने भी सोचा शायद अभी वापस नहीं आएंगे, इसलिए बोल दिया कि आपको जिसको भी बुलाना है बुला लो, जिनको मिलना है मिलने आकर के। तो पहले गुलजार दादी गई। गुलजार दादी के पहले एक दिन अचानक 2 बजे नींद खुली दादी की, माना जागी, जाग गई। और जागते ही कहती है, हंसा हंसा बैठी होगी बाजू में उनकी ब्राह्मणी, राजू को बुलाओ। कहती 3 दिन हो गए दादी एक शब्द भी नहीं बोली, और जब बोली है तो बोलती है राजू को बुलाओ। क्यों? हंसा ने कहा, दादी आपको पता टाइम क्या है? बोला 2 बजा है। अब 2 बजे मैं कैसे उसको बुलाऊंगी, और आप अहमदाबाद में हैं और वो आबू में है। अच्छा 2 बजा है, ठीक है 4 बजे उसको फोन करना। फिर मेरे पास फोन आता है 4:30 के लगभग। हंसा कहती है, पता नहीं दादी 3 दिन से तो बोली नहीं, और बोली है तो कहती राजू को बुलाओ। मैं पूछो तो क्या कहती है? नहीं उसको ही बुलाओ, उसको ही बुलाओ, आप आओगे? हमने कहा जरूर आऊंगा, दादी बुला रही है तो। अब मैं यहां से निकला, स्नान वगैरह तैयार होकर के गया, 9 बजे पहुंचा अहमदाबाद। पहुंचते ही गया हॉस्पिटल में, तो आईसीयू में थी, और आईसीयू में किसी को जाने नहीं देते थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे डॉक्टर्स। अब दादी को वहां पता चल गया, अंदर अंदर टेलीपैथी, तो आ गया है, बाहर बैठा है। तो हंसा को कहती है, देखो वो आ गया, बाहर आ गया होगा, तुम उसकी जगह पर तुम बैठ जाओ और उसको भेज दो अंदर। अब मैं अंदर गया तो मेरे पास तो और कुछ नहीं था, मोबाइल था, और उसमें रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर लिया। और रिकॉर्डिंग ऑन करके मैं दादी के सामने गया, हमने कहा अभी लिख तो सकते नहीं, क्या बोलना चाहती हैं, क्या कहेंगी? तो जो रजाई ओढ़ी थी उसके अंदर मैंने वो मोबाइल रखा। न दादी आपको कुछ कहना है, किस लिए बुलाया मुझे? तो पता क्या कहती है? कहती है सारा विश्व सोचता है दादी बीमार है, मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है, तो सबको मेरी तरफ से याद पत्र लिखो, और ये लिखो दादी बिल्कुल बीमार नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, अब आईसीयू में भर्ती है, ऐसे बोल रही मेरे को। तो मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया, जो भी 5-7 मिनट बोला, कुछ एक आधी बातें बाबा की सुना दिया, तुम जाओ इसको टाइप करके भेज दो सबको। तो मैं जब आया, हंसा बहन कहती क्या हुआ था दादी, तुमको क्यों बुलाया? मैं इसलिए बुलाया। कहती वो तो मेरे को भी लिखा सकती थी। हमने कहा उनका फेथ, उनका विश्वास, विश्वास की बात है ना, कि इसको जो लिखाएंगे वो सब सीधा लिखेगा, सबको भेजेगा। तो मैं लेकर के वहां से आया और टाइप करके कुछ मिनट में भेज दिया सब जगह। जब सबको भेज दिया तो दादी को पता चला, भेज दिया कि मैं ठीक हूं। उसके बाद गुलजार दादी गई, तो गुलजार दादी को बोलती है तुम क्यों आई हो? बोला दादी मैं दिल्ली में थी और बाबा का प्रोग्राम है, 20-25 हजार लोग आए हैं, मैं शांतिवन जा रही हूं, मैं मिलने आई हूं आपसे। अच्छा बाबा आने वाला है, मुझे भी ले चलो। दादी कहती नहीं दादी आपको डॉक्टर छुट्टी नहीं देंगे, अभी 3-4 दिन आप रेस्ट कर लो फिर आ जाना। दादी चुप हो गई और गुलजार दादी मिल करके वहां से निकल के बाहर आ गई, चली गई, मधुबन आ गई। उसके बाद डॉक्टर आया, डॉक्टर को कहती है डॉक्टर मुझे छुट्टी चाहिए, अभी चाहिए। डॉक्टर कहता दादी कैसे छुट्टी देंगे आपको, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ऐसी तकलीफ में मैं छुट्टी नहीं दूंगा। तो दादी ने पता क्या प्रश्न पूछा डॉक्टर से? अच्छा ये बता तो मुझे ठीक कर सकता है? तो डॉक्टर कहता है दादी ठीक करना तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं दवाई दूंगा, मैं संभाल करूंगा, ठीक करना तो ऊपर वाले के हाथ में है। कहती जब ऊपर वाले हाथ में है तो तुम जवाबदारी क्यों लेता है, तुम अभी मुझे खोल दे। डॉक्टर क्या कहे, जयंती भाई समझाए, निर्भय भाई समझाए, सब बैठे, दादी मान जाओ। कहती मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना है, मुझे अभी ले चलो। अब कैसे करके आईसीयू से जनरल वार्ड में लाए, संभालने की समझाने की बहुत कोशिश की। जब बहुत समझाने लगे तो विल पावर खड़ी हो गई, कहती है तुम लोग बुलाओ या ना बुलाओ मैं टैक्सी में जाऊंगी, मैं जाऊंगी, क्या करेंगे। डॉक्टर कहने लगे ठीक है चलो दादी। अब वहां से लेके आए उसी हालत में, और लेके आए तो कहती है कि मैं कमरे में नहीं जाऊंगी, जो 20,000 लोग बैठे मैं उनके पास पहले जाऊंगी। आई क्लास में, सीधा ही आ गई और आते ही क्लास कराया 15-20 मिनट जो सुनाना था, मिली सबसे और उसके बाद ठीक हो गई, बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उनकी अपनी जो विल पावर थी, कोई बीमारी का चिंतन नहीं था, चिंता नहीं थी, बेफिक्र थी। तो मैंने देखा कि दादी ने मौत पर भी विजय प्राप्त की थी, कभी भी उनको ये परवाह नहीं थी कि मेरे कुछ हुआ है या हो जाएगा। ऐसे ही देखो अचानक गई, कहती थी 5 रुपया भी खर्च नहीं होना चाहिए हमारी अर्थी पर। तो एक दिन हंसी में ही मैंने कहा था, मेरे कहती है आप मेरा बिल लिखो। हमने क्या बिल लिखो, आपके पास क्या है, आपने तो सब बिल कर दिया ना, आपके पास है क्या। कहती नहीं लिखो। हमने अच्छा लिखाओ। तो मेरे को लिखाती है कि जब मेरी अर्थी निकले तो उस अर्थी पर फूल मालाएं नहीं चढ़नी चाहिए। हमने ऐसा कैसे होगा दादी, ये क्या सोच रही है आप संस्था की हेड हैं और आप कहती हो ऐसा होगा, तुम लिख। मेरे को लिखा दिया, लिख दिया। 2009 में लिखाया, गई 20 में, अब लिखा दिया। और उसके बाद ऐसे समय पर गई है जो सचमुच उनके ऊपर फूलमाला नहीं चढ़ी। लॉकडाउन हो गया, कोई आ ही नहीं सकता, कोई मिल ही नहीं सकता। चंदन के जो थोड़े बहुत फूल घर में होते वो चढ़ाए गए, क्योंकि उसमें तो बहुत सिक्योरिटी थी कोरोना के कारण, पुलिस खड़ी चारों तरफ से, 15 लोग 20 लोग से ज्यादा नहीं आएंगे सामने, थोड़े बहुत हम लोग ही थे, बाकी तो कोई था ही नहीं, कोई को गेट में प्रवेश होने की छुट्टी नहीं थी। तो दादी जी की जो क्लासेज हुई हैं 72 से लेकर के, सब रिकॉर्ड मैंने किया, सब टाइप किए, सामने नहीं बैठता था तो कभी कभी मुझे भी सुनने को मिलता था कि यहाँ क्लास चल रहा है तुम कहाँ था। मैं क्या करता था कि दादी अगर वहाँ क्लास करा रही है, स्पीकर चल रहा है, तो हम डायरेक्ट स्पीकर सुनते हुए टाइप कर देते थे, दोबारा नहीं सुनना पड़े, क्योंकि दादी की हर क्लास टाइप हुई, जितनी क्लासेज कराई सब क्लासेज टाइप होते थे। और जब तक मुझे कहीं सुनने को मिल जाए कि दादी की क्लास चल रही है और माइक पर रिले हो रही है, तो मैं स्पीकर पर सामने लेकर के या हेडफोन लगा के बैठ जाता था और उधर क्लास कराया इधर टाइप हो गया, और टाइप करके तुरंत उनके हाथ में दे देते। उनको बहुत ज्ञान रत्नों का इतना शौक था, यहाँ भेजो, इसको भेजो, उसको भेजो, कुछ न कुछ नवीनता, कुछ न कुछ विशेषता उस क्लास में होती थी। कभी भी इनके क्लासेज मैंने रिपीट नहीं देखे, तो कुछ बातें तो रिपीट होती थी, जैसे लास्ट में सार सुनाने लगी, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। 3 बातों में पूरे ज्ञान को ही समेटा, लेकिन इसमें भी कुछ न कुछ नवीनता, इन शब्दों में भी कोई न कोई नवीनता। दादी ने बहुत विस्तार किया ज्ञान का, हर धारणा पर ध्यान खिंचवाया और सार रूप में मैं आत्मा, मेरा बाबा और ये ड्रामा में जो कुछ हो रहा है बिंदी, कुछ भी याद नहीं करना। कभी भी किसी की कमी कमजोरी सुनती नहीं थी, एक शब्द कहते थे देखो बाबा ने बड़ा अच्छा किया है, मेरे कान बंद कर दिए, एक कान से सुनता नहीं था, कहती कितना अच्छा है मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है, कोई व्यर्थ बातें बोलता है मुझे सुनता ही नहीं है, कोई भी बात सुनाओ छोड़ो इनको क्या करना है, बाबा को सुना दिया, बाबा को बता दो बस, दादी ऐसा हो रहा है सब, मैं नहीं सुनती, तुम इनको ज्ञान का पत्र लिख दो, अच्छी बातें लिख दो और इन बातों में क्या जाना। कभी भी कोई की कमी कमजोरी संस्कार इधर उधर की बातें, अगर यज्ञ के अंदर भी कोई ऐसी बातें लेकर के हम गए कि यज्ञ में ऐसे हुआ वैसे हुआ, कहती क्या करना चाहिए दादी, वो यज्ञ में रहने लायक नहीं है। तो पता क्या कहते थे, अच्छा यज्ञ में नहीं रह सकता, यज्ञ में सुधर नहीं सकता, तो तो बाहर जाकर सुधर जाएगा क्या? चांस दो उसको, संग दो उसको, यहां ही बदल जाए तो और अच्छा है, नहीं बदलेगा तो अपने आप जाएगा। तुम निमित्त नहीं बनो किसी के। इतनी अंदर की रहम भावना, दया भावना, परिवर्तन की भावना इन दादियों में बाबा ने कूट कूट करके भरी थी। दातापन के संस्कार इतने जबरदस्त रहे हैं, किसी से लेना नहीं है, लेकिन सबको यज्ञ सहयोगी बनाना है। एक दिन की रमणीक बात सुनाता हूँ। दादी जान की तो बहुत रमणीकता से कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता था, क्योंकि बार बार जब जाओ तो एक घंटा तो बैठना ही पड़ता था, आधा पौना घंटा तो कामन बात थी, बैठे रहो, इधर बैठो, सुनो मैं क्या कर रही हूँ, देखो। तो एक दिन मैं ऐसे बैठा था, पत्रों वगैरह का काम तो 10-15 मिनट में हो गया, फिर भी नहीं उठने दिया, बैठो इधर बैठो। तो मैं बैठा था तो एक बहन आई, बहुत बड़े घराने की थी, विदेश की कोई रॉयल फैमिली की थी। तो जब वो आई तो मुझे कान में बोलती, वो हिंदी नहीं समझती थी, इंग्लिश वाली थी, कहती ये जो है ना, ये कभी यज्ञ में सहयोग नहीं देती है, बहुत पैसा है इसके पास लेकिन यज्ञ में कभी करने के लिए दिल नहीं होती, आज इसे कराऊंगी। तो मैं हंसने लगा, मैं कैसे कराएंगी, मांगेंगे क्या? नहीं नहीं मांगूंगा क्यों, मांगना तो बाबा ने कहा, मरना भला, मांगना थोड़ी होता है, तुम बैठो सिर्फ देखो। मैं बैठ गया, हमने देखें क्या करती। कहती है इसके लिए शॉल ले आओ, फिर दूसरी बार कहती है इसके लिए अंगूठी ले आओ, इसके लिए ये ले आओ, इसके लिए ये ले आओ। स्लोगन दिया, फल दिया, कार्ड दिया, अंगूठी पहनाई, शॉल दिया, सब देती जा रही देती जा रही। अब जब सब दे दिया, उसने देखा और कहती है, पसीना पसीना हो गई, पानी हो गई, कि दादी इतना सब मुझे दे रही है। और दादी ने दे दिया और उठ करके बाहर गई, कहती भाई मेरे ऊपर यज्ञ का बहुत बोझ चढ़ा दिया दादी ने, मेरे को लिफाफा दे दो, मैं भी कुछ यज्ञ में दे जाऊं। अब वो तो डॉलर पाउंड वाली थी, लिया और डाला, और डाल करके दादी प्लीज आपने तो मुझे इतना यज्ञ से दिया है, मेरा भी कुछ स्वीकार कर लो, रख के चली गई। वो चली गई, कहती देखा ऐसे कराना होता है। मांगना थोड़ी होता है, ये सीखने की बातें हैं ना, कि इतना प्यार दो, इतना उसको सम्मान दो, इतना अच्छा खातरी कर दो, तो अपने आप उसको आएगा। तो कोई नहीं आएगा तो वो चाहेगा अपने ऊपर, खुशी नहीं होगी, योग नहीं लगेगा। यज्ञ का अगर कोई खा के चला जाए, मान लो आज आपके ऊपर 1000-2000 का खर्चा हो रहा है, और आप सोचो बहन तो मांगती है मेरे से 2000, और आप 500-1000 करके चले जाओ, या पूछो तुमने कितना किया, तुमने कितना किया, तो क्या होगा? भले नहीं करो, बाबा का यज्ञ तो भरपूर है, बोझ तो आपके ऊपर चढ़ेगा, और बोझ चढ़ेगा तो योग नहीं लगेगा, बोझ चढ़ेगा तो खुशी नहीं होगी। कई बातें आती हैं, यज्ञ का बोझ चढ़ाना कोई कम बात है क्या? भगवान के यज्ञ में इतनी पालना, इतनी अच्छी तरह से हमारी सब प्रकार की संभाल हो, और कोई बाबा का बच्चा कंजूसी करे, होते हुए भी न करे, अगर इसी जगह पर होटल में रह जाएंगे तो 10,000-20,000 तो ऐसे खर्च हो जाएगा, तो सोचने की बात है। तो दादियां हमारे इस यज्ञ को मजबूत करने के लिए, भरपूर करने के लिए कभी कभी ऐसे कहती थी, देखो इन सब दादियों को बाबा ले गया एडवांस पार्टी में, इनको वीजा दे दिया, मेरे को वीजा नहीं देता। तो एक दिन मैं ऐसे बोला, मैं दादी आपको वीजा अभी नहीं मिलने वाली है। कहती क्यों नहीं मिलेगी, क्या जरूरत है मेरी अभी यहां, तुम लोग बैठे हो ना सब, हम तो अभी बहुत बड़ी हो गई आयु। ना दादी, आपके बैठने से यज्ञ का भंडारा भरपूर है, आपका बैठना बहुत जरूरी है। कहती अच्छा, मेरे बैठने से भंडारा भरपूर है? हाँ। और सचमुच लास्ट तक भी उन्होंने जो देश में सेवाएं की हैं, एक ही लक्ष्य था, इतनी बड़ी आयु में रिफ्रेश होते थे, ब्राह्मण खुश होते थे, लेकिन यज्ञ भरपूर होता था उनके जाने से, हर चीज संपन्न। तो लास्ट तक भी वीजा नहीं मिलता, वीजा नहीं मिलता, रट लगाई थी। अब वीजा बाबा ने दिया तो अभी भी उसका तो संकल्प तो यही होगा ना, कि बाबा का यज्ञ भरपूर रहे, यज्ञ में कोई कमी नहीं पड़े। शुरू से लेकर के यज्ञ के प्रति, बाबा के प्रति, भंडारा और भंडारी के प्रति बहुत श्रद्धा, बहुत भावना। कभी भी ये कोई नहीं कहेगा, कहे कि यहां कोई कमी है। त्याग वृत्ति तपस्या, लेकिन भावना यज्ञ के प्रति बहुत बड़ी। तो इसलिए दादियों को बाबा ने इसलिए संभाल के रखा। भले अभी एडवांस पार्टी में है, लेकिन मैं तो हमेशा अनुभव करता हूं कि उनकी छत्र छाया के नीचे यज्ञ फल रहा है, फूल रहा है, वृद्धि हो रही है, इतना बड़ा विस्तार हो रहा है। कितनी लॉकडाउन में सेवाएं हुई हैं। आप लोग तो शायद, कोई लॉकडाउन वाला निकला है? यहां है कोई जिन्होंने लॉकडाउन में ज्ञान लिया हो? कोई बैठे हैं इसे? नहीं है, है दो तीन बैठे हैं, लॉकडाउन वाले भी हैं। माना इस साल के अंदर मार्च से मार्च तक ज्ञान में जो आए, हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ, थोड़ा आपका तो सम्मान होना चाहिए। अच्छा भाई, चार है, तीन उठे, देखो तीन चार पांच एक पीछे छह। अच्छा, एक साल के अंदर के हैं। देखो लॉकडाउन में बाबा ने पैदा किया ना बच्चे। अभी मैं गया था भोपाल, वहां पर एक सिंधी परिवार पहले ज्ञान में चलता था। उसकी मां ने शरीर छोड़, मां चलती थी, उसने शरीर छोड़ा। अब लॉकडाउन के अंदर उस भाई को आया, उसका जो बेटा था उसको आया कि हम सिंधी समाज की मां के नाम पर कुछ सेवा करें, बाबा का ज्ञान दें। और लॉकडाउन में पूना, सोलापुर और नागपुर, तीन जगह उसकी फैमिली रहती थी, रूपचंदानी परिवार सिंधी। और रूपचंदानी परिवार को टोटल उसने सबको कोर्स करवा दिया, ऑनलाइन कोर्स सेंटर से। बहनों को बोला, दीदी आप कराओ, मां के निमित्त कराओ। और सब इतने पक्के बाबा के बच्चे बने, सात आठ युगल निकले लॉकडाउन से, और इतने करोड़ों पति बाबा के बहुत बड़े पैसे वाले बच्चे निकले। जब मैं गया भट्टी के अभी पिछले मास, वो सब के सब भट्टी में बैठे हुए थे। हमने ये समझ रहे हैं सब? बोला सब समझ रहे हैं, बहुत पक्के बाबा के बच्चे, निश्चय बुद्धि बच्चे हैं और तन मन धन से पूर्ण सहयोगी हैं। एक ने अपना जन्मदिन मनाया, सारे सिंधी समाज को इकट्ठा कर लिया, सेवा करा रहे हैं। तो लॉकडाउन भी कल्याणकारी है ना, इसलिए ऐसा नहीं सेवाएं बंद हो गई, सेवाएं नहीं बंद हुई, बहुत अच्छी सेवाएं हो रही हैं। क्योंकि बाबा तो बच्चों को संपन्न संपूर्ण बनाने के लिए तैयार कर रहा है। योग भट्टियां ही चल रही है ना, किस लिए योग भट्टी कर रहे हो? संपन्न बनने के लिए ना, सब किचड़ा निकल जाए, सब पुराने संस्कार खत्म हो जाए, आत्मा पावन बन जाए, इसके लिए तो भट्टी कर रहे हैं। तो ये दादियां अभी गुप्त रूप में एडवांस पार्टी में गई हैं, रूपरेखा बदल दिया सेवा की, जो वाचा सेवा, भाग दौड़ की सेवा, सेमिनार करो, अभियान निकालो, इधर जाओ उधर जाओ, घर में बैठो, कहीं नहीं जाओ, लेकिन मनसा इतनी शुद्ध हो, इतनी पवित्र हो। कितने समय से बाबा ने कहा है, तीन बातों का बैलेंस रख करके सेवा करो, और दादियों ने उसी को ही अपने जीवन में उतारा। वाचा सेवा, मुख से ज्ञान देना, लेकिन मन की स्थिति का प्रभाव, जितनी मन की स्थिति अच्छी है उतनी श्रेष्ठ वाचा होती है। और कर्मणा द्वारा हर आत्मा को स्नेह देना, सहयोग देना, गुणों का दान देना। तो बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाओं का बैलेंस सिखाया, और तीनों सेवाएं अगर साथ साथ चलती हैं तो सेवा की सफलता मिलती है। और दादियों ने इसी विधि से लेकर के एक तरफ उनकी पालना की है, कर्मणा में आकर के कुछ खिलाया, कुछ सौगात दिया, कुछ कुछ भी किया, दूसरी तरफ उनको ज्ञान रतन दिए मुख से, और तीसरी तरफ मनसा बड़ी पावरफुल, शुद्ध पवित्र निर्दोष निस्वार्थ। ये तीनों सेवाओं का बैलेंस होने के कारण आज सेवा में इतनी सफलता हो रही है। बाबा की जितनी सेवाएं रही हुई हैं, अभी आप ये नहीं सोचना सेवा पूरी हो गई, अभी तो बाबा कहता है क्यों लगने वाली है, और आप सबको तो मास्टर दाता बनना पड़ेगा, देना पड़ेगा, आपके पास इतना स्टॉक जमा होना चाहिए। अंत समय में प्रत्यक्षता का आधार जो मैं समझता हूं वो है साक्षात्कार। किसका होगा? ये जो हमारी दादियां एडवांस में गई हैं, संपूर्ण बन करके बाबा के साथ विश्व कल्याण की सेवा में है, भले नई दुनिया की स्थापना के लिए जन्म हुआ हो, लेकिन अपनी एडवांस पार्टी की आत्माएं अपने संपूर्ण स्वरूप का दर्शन कराएंगी, साक्षात्कार होंगे, और साक्षात्कार से ही बाबा को लोग पहचानेंगे। अब वो समय है, समीप आ गया, तो इन दादियों ने बहुत मेहनत करके इस यज्ञ को मजबूत किया, फाउंडेशन बनी। हमारी दादी प्रकाशमणि ने तो क्या नहीं कमाल किया, उनका उमंग, उनका उत्साह, उनकी विशेषताओं का कितना मैं वर्णन करूं। शायद आप सबको मालूम हो 2003 के बाद दादी जी का स्वास्थ्य थोड़ा थोड़ा बिगड़ने लगा, साथ में शरीर छोड़ा। 2004 से एक धुन लगाई, एक एक लाख का प्रोग्राम होना चाहिए, एक लाख की सभा हो ब्राह्मणों की। अब सबने मीटिंग में, कमेटी में सबने बोला, दादी हमारे पास 1 लाख लोग क्यों आएंगे, किस लिए आएंगे, कोई हमारे एक्टर नहीं है, कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं है, आपको संकल्प तो आ रहा है लेकिन लगता नहीं है सफल होगा। कहती है, मुझे बाबा कह रहा है 1-1 लाख के प्रोग्राम होने चाहिए। सब चुप हो गए। सबसे पहले गुजरात की सरला दीदी ने कहा, दादी मैं करूंगी अहमदाबाद में, देखते हैं क्या होता है। और पहला मेगा प्रोग्राम जो हुआ है अहमदाबाद में, 2 लाख लोग आए और केवल 3 दादियां स्टेज पर थी, जानकी दादी, गुलजार दादी और प्रकाशमणि दादी, और कोई बाहर वाला नहीं स्पीकर। इतनी बड़ी ऊंचा मचान बनाया था, कहीं गाड़ियां, कहां कहां लोग खड़े थे, मैं भी गया था देखने के लिए। 2 लाख हुआ, दादी को बस उमंग आ गया, किसी कोई कोई कहे मुझे बाबा कह रहा है। अब रोज नए स्थान पर प्रोग्राम, कोई स्टेट नहीं छोड़नी है भारत की, हर स्टेट में 1 लाख का प्रोग्राम होना चाहिए। शुरू हो गई सेवाएं, विस्तार करा दिया, एकदम धूम मचा दी। और जो नहीं करता था, मुझे ऐसे बुलाती थी, इधर तुम बैठ मेरे पास, तुम इसको फोन लगाओ, तुम पहले बात करो फिर मेरे को फोन पकड़ा देना। सीधा ही बोलती थी, तेरे बैंक में कितना रखा है वो बैंक का पैसा निकाल दो। किस लिए रखा है? साथ ले जाने के लिए रखा है क्या? सफल करो, लगाओ सेवा में। लास्ट में कहती है, सब प्रोग्राम जब सब जगह के हो गए, तुम शांतिवन वालों ने तो कुछ भी नहीं किया, अरे जाओ 50,000 लोगों को बुलाओ। दादी 50,000 लोग कहां से आएंगे गांव गांव में, जाओ सब गांव गांव की सेवा करो, सबको बुलाओ और कहो दादी भोजन खिलाएगी, सौगात देगी। 50,000 लोगों को बुलाओ शांतिवन में, ये गांव गांव के लोग, दूर दूर के सब आदिवासी, भील, ग्रासिया। दादी ने, कोई भी है, मुझे यहां 50,000 की सभा करनी है। सब गए, इधर उधर निमंत्रण दिया, दादी के नाम से सचमुच इकट्ठे हुए 45,000 तो आ गए थे। दादी ने कहा, सबको मैं अपने हाथ से सौगात दूंगी, सबको अच्छा भोजन खिलाओ। ये लास्ट में सेवा करके गई। तो दादियों के अंदर जो उमंग उत्साह था, उससे सेवाओं का कितना बड़ा विस्तार हुआ। हम सोचते हैं ऐसे कैसे होगा, ये क्या होगा, विचारों को मिलाना जरूर है, लेकिन जो शुभ संकल्प आता है, शुभ संकल्प को कहती थी डिले नहीं करो, डिले इज डेंजर। कभी भी शुभ संकल्प आता है तुरंत कर दो, नहीं तो माया बीच में इंटरफेयर कर लेती है। और खराब संकल्प आता है उसको छोड़ दो, डिले कर दो। तो दादी जी के अंदर इतना उमंग, इतना उत्साह रहा सेवाओं का, जो आज इतनी बड़ी सेवाओं का उन्होंने विस्तार करा दिया। और इतना अंदर अंदर गुप्त पुरुषार्थ करके, ऐसे आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने की जो उन्होंने मेहनत की है, जो पुरुषार्थ किया है, वो हम लोगों ने बहुत समीप से देखा। और ऐसे बैठते रहते, कुछ नहीं सोच रहे, जैसे निर्संकल्प समाधि। 2-3 बार मैं दादी के पास ऐसे अचानक पहुंचा हूं, क्योंकि मैं ऊपर रहता, पांडव भवन में रहता था, दादी नीचे थी बीमारी के समय। एक दिन मैं गया ऐसे, तो बैठी थी आंख बंद करके, तो मैंने बाजू में बैठ के बोला, दादी अच्छा तुम ऊपर से आया है? मैंने, हाँ दादी, क्या चल रहा है? 2-3 साल ऊपर नहीं आई थी। तो मैंने कहा, दादी सब अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। ज्ञान सरोवर के लिए पूछा, पांडव भवन के लिए पूछा, सब पूछ के जब मैंने हर बात में बोला बहुत अच्छा सब ठीक चल रहा है, कैसे चला है? कैसे चला है? अरे आपके श्रेष्ठ संकल्पों से चल रहा है। बाबा कहता संकल्प से सारी कारोबार चलेगी, आपको बोलने की क्या जरूरत, आप यहां बैठी हैं, संकल्प श्रेष्ठ कर रही है, सारा सब अच्छा चल रहा है। तो मेरे को ऐसे आंख दिखाती, क्या बोला? मेरे संकल्प से चल रहा है? भूल गया तुम, बाबा के संकल्प से चल रहा है, वो चला रहा है सारा यज्ञ को, मैं थोड़ी चला रही हूं, मैं क्या कर रही हूं। इतना निमित्त भाव, इतना निर्माणचित भाव, जो कभी भी उन्होंने ये नहीं स्वीकार किया कि मेरे संकल्प से चल रहा है, लेकिन उनके संकल्पों में इतनी शक्ति, इतनी पवित्रता, इतनी शुद्धता, इतनी सुभावनाएं थी जो कोई गलत कर ही ना सके, वो शक्ति थी। लेकिन फिर भी ये कभी नहीं स्वीकार किया, महिमा नहीं स्वीकार की, कोई कुछ भी कहे, नहीं नहीं तुम लोग भूल गए हो, बाबा बैठा है, बाबा करा रहा है, बाबा का घर है, बाबा का कार्य, हर संकल्प में बाबा बाबा था। ये कर्मातीत स्थिति की निशानियां हैं। फिर दूसरी बार एक बार गया, ऐसे बैठी थी आंख बंद करके, मैं, दादी क्या करती हैं आप अकेले बैठ करके? ऐसे आंख बंद किया हुआ बहुत देर तक मैं बैठा रहा। हमने कहा क्यों इनको डिस्टर्ब करूं? मैंने कहा मेरा काम है, थोड़ा तो हिला देता हूं। मैंने हाथ पकड़ा, ऐसे हिलाना शुरू किया, क्या है? ऐसे खोला आंख, दादी क्या कर रही थी आप, बताऊं क्या कर रही थी? मैं, हाँ दादी बताओ। कहती थी आज मैं बहुत अच्छी बाबा से रूह रिहान कर रही थी। क्या रूह रिहान किया? मैं अपने हीरे को, आत्मा को, बाबा कहता ना हीरे में कोई दाग तो नहीं है, चेक करो, तो मैं आज अपने हीरे को देख रही थी, ऐसे हथेली किया, इस आत्मा को ऐसे हथेली पर रख करके चारों तरफ से दृष्टि दे रही थी, हीरे को देख रही थी, आत्मा रूपी हीरे को देख रही थी। अब बहुत देर तक देखा तो मुझे कोई दाग नहीं दिखाई दिया, तो बाबा सामने दिखाई दिया। बच्ची क्या देख रही हो? इस हीरे में कोई दाग नहीं है, ये हीरा बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है। इतना गुप्त पुरुषार्थ एकांत में बैठ करके कोई करते हैं? आप लोग कभी करते हो? ऐसे पूछते हो अपने आप से, मुझे मेरे में कोई भी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, इम्प्यूरिटी, किसी भी प्रकार का आत्मा में दाग तो नहीं है? उस हीरे के दाग को तो निकाला नहीं जा सकता, उसको घिसाई करेंगे, कटपिट करेंगे, लेकिन आत्मा रूपी हीरे में अगर कोई दाग है तो बाबा कहता है योग की तपस्या से, योग ज्वाला बना करके उसको निकाला जा सकता। तो अगर हम सब योग ज्वाला का स्वरूप ले ले, बहुत पावरफुल योग करें, तो हमारे संस्कार, हमारे कमी कमजोरी के दाग मिट सकते हैं। ये दादियों ने करके दिखाया है, तो हम सबको ऐसी तपस्या करनी है, अपने पूर्वजों को फॉलो करना है। उन्होंने जिस प्रकार से यज्ञ की नींव बन करके, चार प्रकार का बल उनके अंदर था, सबसे बड़ा बल था निश्चय का बल। निश्चय इतना अटूट था, ये भगवान का कार्य है, भगवान के बच्चे हैं, ड्रामा कल्याणकारी है, मैं आत्मा कल्याणकारी हूं, इसमें कोई भी सीन में मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। निश्चय के आधार से विजय हुई पड़ी है, पहला बल निश्चय का बल था। और दूसरा सबसे बड़ा बल था उनकी पवित्र जीवन, निर्मल जीवन, इतनी पवित्र स्वच्छ जीवन जो कोई भी उसको दाग न लगे, कहीं पर भी कोई आंच ना आए। पवित्रता के बल से नई दुनिया की स्थापना होती है, इसलिए वो पवित्रता का बल योग बल ले आता है, और अनुभव का बल था। हर चीज अनुभव से देखी थी, अनुभव से परखी थी, अनुभव की अथॉरिटी थी, इसलिए बोलने से लगता था ये सब अनुभव किया हुआ है, तो निश्चय का बल, पवित्रता का बल, योग का बल और अनुभव का बल, इन बल के आधार से वो लोगों ने, आत्माओं ने, दादियों ने इस यज्ञ को बहुत मजबूत बना दिया, पिल्लर बन गई और आज इतना निर्विघ्न कार्य बाबा का चल रहा है। उनकी तपस्या का बल है, उनका योग का बल है, जिस बल से आज हम सब आराम से माया जीत बन करके रह रहे हैं। तो हम सबको यही बल जमा करने हैं, जैसे दादियों ने जमा किए, हम भी ऐसे बन के दिखाएं। ठीक है, बहुत कहानियां हैं, ये तो सुनते रहेंगे तो बहुत सारी बातें हैं। टाइम हो रहा है, मैं समझता हूँ हो गया ना टाइम, 12:30 होने वाला है, मैं विराम करता हूँ। ओम शांति।